Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om, Om, Om. Adi Guru Shankaracharya Virachit दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतम यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ् निर्विकल्पम् पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रवाभास्वरम् ज्ञानम् यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनु तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहम् प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिम् च शून्यम् विदुः स्त्रीबालान्धपणोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत्सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्यन्दिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्तास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वम् पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना वेदत स्वप्ने जाग्रति वायये स पुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य नलो निलोऽम्बरमहर् नाथो इमांसुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वम् स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम्।
दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की व्याख्या के अंतर्गत सातवें स्तोत्र की व्याख्या है।
बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये।
प्रसंग चल रहा है प्रबोध समये यप्रत्यभिज्ञायते, सोकर जगने के बाद मनुष्य प्रत्यभिज्ञा करता है। ये प्रत्यभिज्ञान के बल से ये सिद्ध होता है कि जानने वाला व्यक्ति एक ही है, साक्षी एक है, आत्मा एक है और नित्य है। प्रश्न उठा कि ये प्रत्यभिज्ञा क्या है, किसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा और प्रत्यभिज्ञा का प्रयोजन क्या है। तो प्रत्यभिज्ञान का अर्थ और प्रत्यभिज्ञान का प्रयोजन, इस दो बात को स्पष्ट करने के लिए ये सातवां श्लोक आरंभ हुआ है। जिज्ञासु प्रश्न करते हैं कि प्रत्यभिज्ञा बलात् आत्मा स्थायी निर्धार्यते, यदि प्रत्यभिज्ञान के बल से यदि आत्मा को स्थायी नित्य और एक निश्चय करते हो तो ये बताओ कि कानाम प्रत्यभिज्ञेसः, ये प्रत्यभिज्ञा क्या है इसको स्पष्ट कर दो। किम वा तस्यः प्रयोजनम्, और इस प्रत्यभिज्ञा का मूल प्रयोजन क्या है, इसे क्या सिद्ध करना चाहते हो। क्योंकि प्रमाण के द्वारा विचार करने वाले वैचारिक लोग, विचारकर्ता प्रत्यभिज्ञा को किसी भी प्रमाण के अंतर्गत नहीं लेते। आप लोगों ने कई बार सुना है कि प्रमाण वेदांत सम्मत, न्याय वैशेषिक सम्मत प्रमाण छह हैं, तो इन छह में से कोई केवल एक प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष प्रमाण, उसके अलावा और प्रमाण को मानता नहीं। प्रमा का जो करण है उसको प्रमाण कहते हैं, प्रमा ज्ञान का साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमा ज्ञान का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, और जिससे यथार्थ ज्ञान होता है उसको प्रमाण कहते हैं। तो कुछ लोग केवल एक प्रमाण मानते हैं, वो प्रमाण है प्रत्यक्ष। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं, विषयार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। विषय अर्थ सन्निकर्ष, इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है, सन्निकर्ष का अर्थ होता है अव्यवहितता, बीच में इंद्रिय और विषय के बीच में कोई व्यवधान न हो। जैसे कान और शब्द के बीच में व्यवधान न हो, वह कान उस शब्द को प्रकाशित करेगा, ग्रहण करेगा, जानेगा। इसलिए शब्द को ग्रहण करने का जो प्रमाण है वह श्रोत्र प्रत्यक्ष प्रमाण है। कान से सुनकर ये शब्द है ये निश्चय होगा, तो इसमें कान ही प्रमाण यानी श्रोत्रेन्द्रिय प्रमाण है। इसी प्रकार के चक्षु से रूप आदि का ग्रहण जो होता है वो भी सन्निकर्ष से ही होगा। सन्निकर्ष का अर्थ होता है अव्यवहितता, बीच में कोई व्यवधान न हो। तो आंख और पदार्थों के बीच में कोई व्यवधान न हो तब वह आंख उस पदार्थ को स्पष्ट ग्रहण करती है। तो आंख के द्वारा जो पदार्थ का इदमित्तम ये जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार के सन्निकर्ष रस और जिह्वा, अव्यवहितता रस और जिह्वा के जो सन्निकर्ष है उसके द्वारा इदमित्तम जो ज्ञान होगा कि ये ऐसा है, मधुर है, लवण है, कषाय है, कटु है, तिक्त है इत्यादि, ये रासन प्रत्यक्ष होगा, रसन इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष होगा। ऐसे अन्य इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थों का ग्रहण होकर पदार्थों का ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। बहुत से लोग केवल एक प्रमाण मानते हैं, ये प्रमाण से सारा लोक व्यवहार चल जाएगा और बहुत प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। और लौकिक व्यवहार में लगभग 99% काम इसी प्रत्यक्ष से ही चलता है, लेकिन 100% काम नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 100% चल जाएगा, तो कहीं कहीं नहीं चलता है, तब फिर प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान करना पड़ता है, जो कि इंद्रिय और पदार्थ का ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष सन्निकर्ष नहीं है, फिर भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए अनुमान करते हैं। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, उस पहाड़ में जरूर अग्नि है, तुम कैसे निश्चय कर रहे हो? अग्नि देखकर? बोले देख तो नहीं रहे, फिर कैसे निश्चय कर रहे हो? धुएं को देखकर। तो धुएं को देखकर तो धुएं का निश्चय होगा, अग्नि का तो होगा नहीं, क्योंकि जो देखोगे वही निश्चय होगा। देखा तुमने धुएं को और निश्चय कर रहे हो अग्नि को, ये कैसे हो गया? साचर्य नियम के द्वारा व्याप्ति स्मरण करके निश्चय होता है कि अग्नि प्रत्यक्ष न होने पर भी अग्नि का ज्ञान होता है। कैसे होगा? तो बोले अनुमान से हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति यह है कि जहां जहां अग्नि है वहां धुआं रहता है, व्यक्ति यह है। इसीलिए यहां धुआं है इसका मतलब अग्नि जरूर है, प्रत्यक्ष न दिखता हुआ भी अग्नि का निश्चय हो गया है, ये अनुमान जन्य ज्ञान है। इसी प्रकार के उपमा जन्य ज्ञान होता है, गो सदृश गवय, गवय कैसे होता है? गवय एक पशु विशेष है, नील गाय को ही गवय कहते हैं, गवय एक पशु विशेष है, लेकिन गवय का ज्ञान कैसे होगा? तो बताया कि गाय जैसा ही होता है, तो गो सदृश गवय, तो गाय को तो उसने देख रखा था प्रत्यक्ष, लेकिन गवय को देखा नहीं था। अब कालांतर में वह जंगल में गया और गाय जैसा ही एक पशु देखा, तो उसको स्मृति आई, यह है उपमा, गाय ऐसा है, गुरु ने कहा था गाय जैसा ही होता है गवय, तो वहां गवय देखने पर उसको यह उपमा स्मरण हुआ कि यह गवय यानी नील गाय है, उसको पक्का निश्चय हो गया है, ये उपमा ज्ञान कहते हैं। गाय गो सदृश गवय इत्यादि शब्द प्रमाण है, किसी के द्वारा कोई कह दिया है, आप तो वाक्य ने कहा, जिस पर हमको पूरा श्रद्धा है विश्वास है, उसने कहा कि ये ऐसा है तो हम उसको मान लेते हैं। जैसे हमारी मां ये कह देती है कि ये तेरा बाप है, तब मान लेते हैं, वहां अनुमान काम नहीं आएगा। आप अनुमान करने लग जाओगे तो वह अनुमान व्यक्ति दोष से दूषित हो जाएगा। किसी पुरुष के बिना बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो ये पुरुष है इसलिए ये मेरा बाप है, तो जिसको भी तुम अपना बाप सिद्ध कर जाओगे। तो क्योंकि प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होगा, अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता है और उपमा भी संभव नहीं है, तो आप तो वाक्य ही वहां काम करता है। यथार्थ बता देने वाला जो व्यक्ति है उसको विश्वास करके ही उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। यानी बाप का प्रत्यक्ष कब होगा? मां के कहने से ही होगा। आजकल तो मां ना भी कहें तो भी और डीएन परीक्षण क्या क्या करते हैं ना, वो डीएनए, तो आजकल तो डीएनए कह देगा कि तेरा बाप ये है, है? मां के कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले डीएनए नहीं था तो मां के ही कहने से बाप प्रत्यक्ष होता था, ये मेरा बाप है। कब होगा? तो मां कहेगी। इसीलिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अर्थापत्ति माने ऐसा नहीं है फिर भी यह है, तो इसका मतलब यह है। तीनों देवदत्ता दीवान भुंगते, देवदत्त बड़ा मोटा है लेकिन ख्याल रखना दिन में नहीं खाता है, इसका मतलब सिद्ध हो गया कि वो रात को खाता है। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, होता तो मिलता, इसीलिए नहीं मिल रहा है इससे सिद्ध हुआ कि यह नहीं है। अनुपलब्धि प्रमाण, खरगोश के सिंह नहीं होते इसमें क्या प्रमाण है? अनुपलब्धि प्रमाण है। खरगोश का सिंह होता तो उपलब्ध होता, किसी न किसी को होता, दुनिया में कहीं भी किसी को भी उपलब्ध नहीं हुआ है, इसलिए सिद्ध होता है कि खरगोश का सिंह होता ही नहीं। अनुपलब्धि आदि प्रमाण, अभाव को सिद्ध करने के लिए अनुपलब्धि प्रमाण भी बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभाव भी प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हो जाएगा चाहे कुछ भी हो। दार्शनिकों ने, विचारकों ने छह प्रमाण माने हैं, लेकिन इन छह प्रमाणों के अंतर्गत ये प्रत्यभिज्ञा एक भी प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता है। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का नाम है कि अनुमान का नाम है कि उपमा का नाम है कि आप्तवाक्य का नाम है कि शब्द प्रमाण का नाम है कि अनुपलब्धि है कि अर्थापत्ति है, इन छह में से एक भी। तो आपने प्रतिविज्ञा से ज्ञान होता है, प्रतिविज्ञा से आत्मा एक सिद्ध होता है, प्रतिविज्ञा से आत्मा नित्य सिद्ध होता है, ये जो कहा है। प्रतिविज्ञा किसी भी प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता है, तो प्रतिविज्ञा को क्यों माना जा रहा है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखो, प्रत्यभिज्ञान के बिना अनुमान भी सिद्ध नहीं होगा, प्रत्यभिज्ञान के बिना प्रत्यक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, प्रत्यभिज्ञान के बिना उपमा भी सिद्ध नहीं होगा। इन सब के पीछे एक वस्तु काम करता है, वो ही है प्रत्यभिज्ञान। ये वेदांत का रहस्यमय शब्द है प्रत्यभिज्ञान। जैसे दो प्रत्यक्षों के बीच में एक रूपता सिद्ध करनी हो तो प्रत्यभिज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 15 वर्ष पहले जो पेड़ किसी स्थान में आपने देखा था, उस समय जिस समय आपने देखा और जाना पूछा और आपको ज्ञान हुआ कि यह वटवृक्ष है, 15 वर्ष पहले वो वटवृक्ष का आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, हुआ कि नहीं? अब 15 वर्ष के बाद फिर आप उसी जगह जाओगे तो वह वटवृक्ष का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कि नहीं? 15 वर्ष के बाद जब जाओगे उसी जगह पर, वही वटवृक्ष वहां खड़ा है, तब फिर आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कि नहीं? हो जाएगा। 15 वर्ष के बाद भी जब उसको आपसे आंखों से देखोगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तब 15 वर्ष पहले जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था उसमें कोई प्रत्यभिज्ञान नहीं थी, बात समझ रहे ना? वहां केवल प्रत्यक्ष था। पहली बार जिस पदार्थ को आपने देखा था वह केवल प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि यह वटवृक्ष है, यह निश्चय हुआ आपको। 15 वर्ष के बाद जब आप गए तब भी वो वृक्ष दिखाई पड़ा, तो इसका मतलब वो प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हुआ। लेकिन इसके बीच में आपको एक स्मरण हुआ आया, ये वही वृक्ष है, यह वही वृक्ष है। ये जो स्मरण हुआ आया तो वो 15 वर्ष पहले प्रत्यक्ष दिखे हुए बड़ वृक्ष में, और 15 वर्ष के बाद आज प्रत्यक्ष दिखता हुआ बड़ वृक्ष के बीच, दोनों प्रत्यक्ष के विषय में एक रूपता सिद्ध करने वाला प्रतिविज्ञा है। आप समझ गए कि नहीं? प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष में और प्रतिविज्ञा में ये अंतर है। प्रतिविज्ञा पहली बार पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो वहां प्रतिविज्ञा की भूमिका नहीं रहती है। जैसे जब भी आपने पहली बार मुझे देखा होगा तो उस समय प्रत्यक्ष से देखा और निश्चय हो गया कि स्वामी आत्मानंद गिरी नेपाल वाले हैं। पक्का हुआ कि नहीं आपको? है पहली बार जो ज्ञान हुआ आपको, वह उसमें प्रतिविज्ञान की भूमिका नहीं है, वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की भूमिका है। प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि स्वामी आत्मानंद जैसे हैं वैसे हैं, तो आपको पूरा ज्ञान हो गया। अब एक वर्ष के बाद फिर उसी महात्मा को आपने देखा तो एक वर्ष के बाद भी आपको प्रत्यक्ष ही हुआ, आंखों से देखा, प्रत्यक्ष ही हुआ। परंतु ये एक वर्ष के बाद जो प्रत्यक्ष हुआ, उस प्रत्यक्ष के बीच में आपको एक दूसरा निश्चय हुआ कि ये आत्मानंद वही आत्मानंद है जो पिछले साल आए थे, ये वही आत्मानंद है। ऐसा होता है ना, किसी की जब तक स्पष्ट नहीं होता है, दूसरी बार प्रत्यक्ष नहीं होता, पहली बार प्रत्यक्ष हुआ, पिछले बार सुना आत्मानंद गिरी जी का प्रवचन, अब एक दो दिन आकर सुना था, एक दो दिन आकर सुने थे, उसके बाद आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब दूसरे साल जून महीने में कौन आएगा, दिमाग में ये जिज्ञासा उठी है, जानने की इच्छा हुई, तो प्रेम प्रियाश्रम का वो वार्षिक कार्यक्रम का बुक दे दिया और देखा उसमें आत्मानंद गिरी, तो नाम पढ़ लिया आत्मानंद गिरी। लेकिन इतनी में से क्योंकि एक दो बार ही देखा था, वो दिमाग में फेस वो संस्कार पूरा पक्का हुआ नहीं था, आत्मानंद गिरी कौन महात्मा है, आत्मानंद गिरी स्मरण नहीं हुआ था, उसके पिक्चर दिमाग में नहीं आ रहा था, पता नहीं कौन है, कितने महात्मा है, आते हैं हर साल, पता नहीं कौन है कौन है। तो नीचे बोर्ड भी देखा आत्मानंद गिरी, तो आए प्रवचन सुनने के लिए, तो बोर्ड में लिखा स्वामी आत्मानंद गिरी, दिमाग में फेस नहीं आ रहा है। हॉल के अंदर जब घुसे तो प्रत्यक्ष हो गए, है ना, एक वर्ष के बाद फिर प्रत्यक्ष हो गए, तब आपको वो स्मरण हुआ आया कि अरे ये तो पिछली बार भी आए थे, हाँ ये तो वही है जो पिछली बार आए थे। ये प्रतिविज्ञा, दो प्रत्यक्षों के बीच में एक रूपता को सिद्ध करने वाले जो विषय है उसको प्रतिविज्ञा कहते हैं। प्रतिविज्ञा न होती तो आप ये निश्चय नहीं कर पाते कि ये वही महात्मा है, आपको फिर यही होता कि ये नया महात्मा है। खाली प्रत्यक्ष होता तो आप एक साल के बाद फिर देखते, फिर आपको कहते ये नया महात्मा है, फिर दूसरी बार देखते प्रत्यक्ष आकर तो बोले ये तीसरी बार जो देखा ये नया महात्मा है। तो जब भी आप देखोगे तब नया महात्मा ही लगेगा, नया ही महात्मा होगा, आत्मानंद हर साल नया महात्मा हो जाएगा, प्रत्यविज्ञा यदि बीच में न हो तो। बात समझ गए कि नहीं? हर साल प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष दिखते ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, हर साल नया महात्मा हो जाएगा, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि ये वही आत्मानंद जी हैं, दूसरा आत्मानंद नहीं है, ये प्रतिविज्ञा है। प्रत्यक्षादि प्रमाणेषु प्रत्यविज्ञान पठ्यते कथं तस्याः प्रमाणत्वं इति वृच्छन् प्रबोध्यते। इस तरह जिज्ञासु ने जब पूछा, प्रतिविज्ञा किसी भी प्रमाण के अंतर्गत न होने के कारण आपने प्रतिविज्ञा को बीच में क्यों लाया, तो उसका उत्तर देते हैं, प्रत्यभिज्ञा के बिना कोई भी प्रमाण सिद्ध नहीं होगा। अनुमान भी प्रत्यभिज्ञा के बिना सिद्ध नहीं होगा। जैसे आपने यहां बैठकर पहाड़ में धुआं देखा और यह अनुमान कर ली कि व्यक्ति स्मरण हुआ, जहां अग्नि रहता है वहां धुआं रहता है, धुआं दिखाई पड़ा, इसका मतलब वहां अग्नि जरूर है। तो यह अनुमान से आपने वहां अग्नि निश्चय कर लिया। अब उस अग्नि को प्रत्यक्ष करने के लिए आप चले गए पहाड़ में, चढ़ाई की और अग्नि दिखाई पड़ा, तो पहले आपने अनुमान किया, अब प्रत्यक्ष हो गया वो अग्नि। तब उस समय क्या हुआ था आपको, जिस समय अग्नि प्रत्यक्ष हुआ पहाड़ में पहुंचने के बाद, वहां आपको प्रत्यभिज्ञा ने काम किया। क्या? मैंने अनुमान से जिस अग्नि को सिद्ध किया था यानी निश्चय किया था, यह वही अग्नि है, यह प्रत्यभिज्ञा। नहीं तो अनुमान और प्रत्यक्ष के बीच में कौन समन्वय करेगा?